नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। ईरान ने यूरोपीय संघ द्वारा अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद यूरोपीय संघ के राजदूतों को तलब किया। यूरोपीय संघ की सेनाओं को आतंकवादी समूह बताया। ब्रिटेन ने रूस के एक राजनयिक को निष्कासित किया, इसे रूस द्वारा ब्रिटेन के एक राजनयिक के निष्कासन की जवाबी कार्रवाई कहा। चीन ने सीमा पार धोखाधड़ी के आरोप में 4 म्यांमार नागरिकों को फांसी दी और जर्मनी में हजारों सार्वजनिक परिवहन कर्मचारी अधिक वेतन और कम कार्य समय की मांग को लेकर हड़ताल पर। अब समाचार विस्तार से। यूरोपीय संघ के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले के विरोध में ईरान ने यूरोपीय संघ के सभी राजदूतों को तलब किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने बताया कि तलब करने की प्रक्रिया कल शुरू हुई। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि ईरान 2019 के एक कानून का हवाला देते हुए यूरोपीय संघ के सभी सैन्य बलों को आतंकवादी समूह मानता है।
यूरोपीय संघ ने यूरोपीय देशों की सेनाओं को आतंकी समूह मानने के ईरान के फैसले को खारिज कर दिया है। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता अनवर अल अनोनी ने कहा कि आयोग यूरोपीय संघ की सेनाओं को आतंकी समूह घोषित करने और उन पर आतंकवाद का आरोप लगाने की घोषणा को अस्वीकार करता है। ये कदम पिछले सप्ताह यूरोपीय संघ के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध करने के फैसले के बाद उठाया गया है। पिछले महीने देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड की हिंसक कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग को हिरासत में लिया गया। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
ब्रिटेन ने मॉस्को में राजदूत को तलब करने के बाद एक रूसी राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। ब्रिटेन ने इस कदम को पिछले महीने रूस से एक ब्रिटिश राजनयिक को निष्कासित करने की जवाबी कार्रवाई कहा है। उस पर अघोषित जासूस होने का आरोप लगाया गया था। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि रूस के आरोप निराधार हैं और पहले किया गया निष्कासन बिना किसी उकसावे के और अनुचित था। चीन ने म्यांमार के 4 नागरिकों को फांसी दे दी है। चीन ने कहा कि ये 4 नागरिक 6 चीनी नागरिकों की हत्या के दोषी पाए गए थे और म्यांमार में धोखाधड़ी और जुए का धंधा कर रहे थे। दक्षिणी चीन के शेंजेन में एक अदालत ने आज सुबह फांसी की घोषणा की। अदालत के अनुसार धोखाधड़ी और जुए के धंधों से $4 अरब से अधिक की रकम जुटाई गई थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 3 दिन की अमरीका यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेना है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्री स्तरीय बैठक में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर इस यात्रा के दौरान अमरीकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में एक रक्षा प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आर्मेनिया पहुंचा। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। ये साझा सामरिक हितों को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ढाका की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 10 साल और उनकी भतीजी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। ये सजाएं पूर्वांचल न्यू टाउन भूखंड आवंटन परियोजना में अनियमितताओं से जुड़े 2 भ्रष्टाचार मामलों में दी गई हैं। अदालत ने शेख हसीना की दूसरी भतीजी अजमीना सिद्दीक और भतीजे रादवान मुजीब सिद्दीक बॉबी को भी 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई। इनके अलावा 18 अन्य आरोपियों को 2 से 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है। पिछले साल शेख हसीना को 4 अन्य भ्रष्टाचार मामलों में 26 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जर्मनी में आज हजारों सार्वजनिक परिवहन कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे अधिकांश शहरों में बस और ट्राम सेवाएं ठप हो गई। लगभग 1,00,000 परिवहन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मजदूर संघ वर्डी ने पिछले सप्ताह नगर निगम और राज्य नियोक्ताओं के साथ कार्य स्थितियों पर बातचीत विफल होने के बाद एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। वर्डी कम शिफ्ट, अधिक आराम का समय और रात तथा सप्ताहांत के काम के लिए अधिक वेतन की मांग कर रहा है। यह हड़ताल जर्मनी के बर्लिन, हैम्बर्ग और ब्रेमिन जैसे प्रमुख शहरों में लगभग 150 नगर निगम परिवहन कंपनियों ने की है। परिणामस्वरूप देश भर के स्टेशन सुनसान पड़े हैं। ईरान में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि अमरीका के साथ वार्ता फिर से शुरू करने की शर्तों पर विचार किया जा रहा है। दोनों देशों ने मौजूदा क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे परमाणु विवाद पर कूटनीति को पुनर्स्थापित करने का संकेत दिया है। एक रिपोर्ट।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा है कि उनका देश वार्ता के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह ईरान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि वह स्वयं पर लगे प्रतिबंधों को शीघ्रता से हटवाना चाहता है। ईरानी सूत्रों के अनुसार अमरीका ने वार्ता फिर से शुरू करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं, जिनमें ईरान के भीतर यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करना, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाना और क्षेत्रीय गुटों को दिए जाने वाले समर्थन को बंद करना शामिल है। हालांकि ईरान ने इन मांगों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी और पश्चिमी राजनयिक ने कहा है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची अगले कुछ दिनों में तुर्की में मिल सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली वार्ता इस सप्ताह होने वाली है। ये वार्ताएं मोर्चे पर जारी लड़ाई और घातक लंबी दूरी के हमलों के बीच हो रही हैं। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की कि त्रिपक्षीय वार्ता बुधवार और बृहस्पतिवार को अबुधाबी में होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। नेपाल में चुनाव आयोग ने कहा है कि आगामी 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनावों के लिए 30,00,000 मतपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाताओं की जागरूकता के लिए लगभग 11,00,000 नमूना मतपत्रों की छपाई की जा रही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए मतपत्रों की छपाई पहले ही पूरी हो चुकी है। भारत और नॉर्वे ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करते हुए राजनीतिक संपर्क, व्यापार और निवेश, समुद्री अर्थव्यवस्था, पुनः उपयोग वाली अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एआई, अंतरिक्ष और आर्कटिक क्षेत्र में इसे और सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज और नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के महासचिव टोरगेर लार्सन ने आज ओस्लो में 12वें भारत नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी 5 से 10 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने के बाद से ये उनका पहला भारत दौरा होगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष बुधवार को कोलंबो के गंगा रामया मंदिर में एक सप्ताह के विशेष प्रदर्शन के लिए श्रीलंका जा रहे हैं। श्रद्धालु 4 से 11 फरवरी तक मंदिर में इसके दर्शन कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने यूरोपीय संघ द्वारा अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद यूरोपीय संघ के राजदूतों को तलब किया। यूरोपीय संघ की सेनाओं को आतंकवादी समूह बताया। ब्रिटेन ने रूस के एक राजनयिक को निष्कासित किया। इसे रूस द्वारा ब्रिटेन के एक राजनयिक के निष्कासन की जवाबी कार्रवाई कहा। चीन ने सीमा पार धोखाधड़ी के आरोप में 4 म्यांमार नागरिकों को फांसी दी। और जर्मनी में हजारों सार्वजनिक परिवहन कर्मचारी अधिक वेतन और कम कार्य समय की मांग को लेकर हड़ताल पर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।